ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यम् नोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानस देह गेह ये भजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति नाम के ग्रंथ से है। शरणागति इस ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेक सुंदर भजन लिखे हैं, उनमें से ये एक है। मानस देह गेह जो किछु मोर और पिलुंतुआ पदे नंद किशोर। मेरा मन मेरा देह और मेरा गृह जो भी कुछ मेरा है मैं आपके प्रति समर्पित कर रहा हूँ हे नंद किशोर, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। संपदे विपदे जीवने मरणे, अर्थात चाहे दुर्भाग्य में सौभाग्य में जीते समय मृत्यु के समय दाय मेमा गेला तुवा उपद परणे, जब मैं आपके शरण में जाता हूँ तो मेरे सारे कठिनाइयाँ वो सब दूर चली जाती है। तो हर अवस्था में मैं कठिनाइयों से मुक्त रहता हूँ, दुख से मुक्त रहता हूँ, कठिन परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, आप मुझे मार सकते हैं आप मुझे रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार। ये आपका अधिकार है क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं। जन्माओ भी मोए इच्छा जदि तोर, भक्त गृह जनी जन्म हो मोर। यदि आपकी इच्छा है कि मेरा पुनर्जन्म हो तो भक्त के घर में ही ऐसा जन्म हो, ये मेरा निवेदन है। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, बहिमुख ब्रह्म जन्मे नाही आश। यदि मुझे अनेक जन्म भी लेने पड़े वो ऐसा जन्म हो भले वो कीड़े का हो, कीट जन्म, परंतु ऐसे में भक्त ऐसा में जन्म नहीं लेना चाहता जिसमें कि मैं अभक्त हूं, भले उस समय मुझे ब्रह्मा जी का पद भी क्यों न मिले। इसलिए वो कहते हैं बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश। बहिर्मुख मतलब जो भक्त नहीं है, जो संसारी है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलना है भले वो ब्रह्मा जी भी क्यों न हो। तो अधिकतर ब्रह्मा जी भक्त होते हैं, कभी कभी कोई योगी भक्त हो ब्रह्मा जी हो सकते हैं, कोई ज्ञानी ब्रह्मा जी हो सकते हैं, विरला ही कोई ऐसे भक्त ब्रह्मा मिले जो भक्त नहीं है परंतु बहुत पुण्यवान है, नहीं तो ब्रह्मा कैसे बनते। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भले मुझे अनेक जन्म लेने पड़े लेकिन भक्तों के घर में भक्तों के साथ में, इसके बजाय कि मैं एक अभक्त ब्रह्मा जी का शरीर धारण करूं। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा विहीन जे भक्त, जो भक्त भुक्ति और मुक्ति की कामना से अर्थात भोग और मोक्ष की कामना से रहित हैं, लभोति ताको संग अनुरक्त। तो मैं ऐसे भक्तों के संग के लिए बहुत लालायित हूँ। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तू हूँ सर्व मोय। आप मेरे पिता हैं, माता हैं, आप मेरे प्रेमी हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं, पति हैं, सब कुछ है, आप ही सर्वस्व हैं मेरे लिए। भक्ति विनोद कहे सुनो काना, राधानाथ तू हो हमारा प्राण। हे कान्हा, हे श्रीमती राधा रानी के नाथ, आप मेरे प्राण हैं, प्राण धन है। तो ये शरणागति का सार है कि श्री श्री राधा कृष्ण को अपना प्राण धन बना देना, अपना प्राण बनाना, जिससे कि वही हमारे सब कुछ हो जाते हैं। उनके सिवाय, उनकी प्रसन्नता के सिवाय हमारे मन में और कोई अभिलाषा नहीं रहे। भले कोई भौतिक इच्छा रहे भी, परंतु कम से कम वो एक अभिलाषा होनी चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं पूरी तरह से मेरे अस्तित्व का, मेरे तन मन धन मानसक देह गेह सब कुछ, वो हर कण इसका श्री श्री राधा गोकुलानंद के सेवा के लिए ही जाएगा। तो कई बार भक्त ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं तो फिर हम कैसे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति का पथ है। भले हम प्रेमा भक्ति की अवस्था में न पहुंचे हुए हो, भले हमारे अंदर कोई भौतिक कामनाएं हो, फिर भी हम शुद्ध भक्ति के पथ में चल रहे हैं। क्योंकि पहली बात, हमें स्पष्ट ज्ञान है कि श्री कृष्ण परम सत्य है और उन्हीं का आश्रय लेना ही सबसे ऊंचा धर्म है और ये जीवन का ध्येय है, इस बात को जानते हैं। दूसरी बात कि जीवन के इस ध्येय श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का पूरा पूरा प्रयास हम अधिकृत पद्धति से सद्गुरु के शरण में आके करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास जब जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ किया जाता है, तो फिर वो शुद्ध भक्ति का पथ है। क्योंकि हम शरणागत हो गए हैं, भले इच्छाएं थोड़ी बहुत रह भी जाएं हृदय में, लेकिन भगवान की और भगवान के प्रतिनिधियों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम समर्पित हो गए हैं। इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। हाँ, शुद्ध भक्त इस दृष्टि से नहीं कि हृदय में और कोई कामना नहीं रही है, वो तो तब हो सकता है जब व्यक्ति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, ये सारे भक्त, ये सब शुद्ध भक्त है मेरे, अपने शिष्यों की ओर इशारा किया, ये सब सर मुंडवा के आदि बैठे थे, तो प्रभुपाद ने कहा ये सब शुद्ध भक्त है, जबकि वो बहुत ही नौसुखिया भक्त थे सब। अभी अभी शरण आए थे, किसी के 2 साल हुए, किसी के 4 साल हुए, किसी के 6-8 साल हुए थे भक्ति में, ज्यादा समय नहीं हुआ था। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कहा ये शुद्ध भक्त है सब। किस दृष्टि से कहा? इस दृष्टि से नहीं कि अभी वो प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, नहीं, इस दृष्टि से कि वो पूरी तरह से शरणागत है। इसलिए शरणागति ये प्रेमा भक्ति या शुद्ध भक्ति के लिए एक बुनियाद है, आधार है। शरणागति से फिर आगे चल के हम शुद्ध भक्ति की ओर जा सकते हैं, लेकिन शरणागत नहीं होंगे तो फिर कैसे हम आगे भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए हमारा पथ शरणागति का है। भगवद गीता के दो श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता 18 अध्याय में कौन से हैं? कौन से नंबर का है वो श्लोक? हाँ, 65 कौन सा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। और अगला वाला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये दो श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। हम यदि केवल शरणागति को लें तो उतना काफी नहीं होता, क्योंकि शरणागति लेने के बाद हम करेंगे क्या? शरणागत मतलब, ठीक है, हमने भौतिक कामनाएं छोड़ दी, हम आपके शरण में आ गए, हम निष्किंचन हैं, हमें और कोई कामना नहीं है, तो ये भी भक्ति है, ठीक है। परंतु इससे भी बढ़कर वो होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समर्पित हो चुके हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जो भक्त बने हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में शरणागति के बारे में। এত সব ছাড়িয়ার বর্ণাশ্রম ধর্ম অকিঞ্চন হন লয় কৃষ্ণ ইক শরণ। এত সব ছাড়ি, ইয়ে সব ছোড় কে, ক্যা ছোড় কে, ইয়ে সব ভুক্তি মুক্তি ইত্যাদি, ইয়ে সারি চিজো কো ছোড় কর, ইহাঁ তক কি বর্ণাশ্রম ধর্ম কো ভি ছোড় কর। কিস দৃষ্টি সে বর্ণাশ্রম ধর্ম কো ছোড়নে কি বাত কর রহে হ্যায়? कि ये बाह्य जो विचार है वर्णाश्रम धर्म का, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बाह्य लक्षण है। आत्मा ना तो कोई का कोई वर्ण है, ना आत्मा का कोई आश्रम है। उस दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म को नकार रहे हैं तो हमें भी पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो अभी तक आत्मा के स्तर में पहुंचे नहीं है, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। परंतु चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत बता रहे हैं। अकिंचन हना लय कृष्णई को शरण, फिर वो कहते हैं कि अकिंचन होकर हमें कृष्ण का एकमात्र शरण लेना चाहिए। कृष्ण एक शरण, कृष्ण एक शरण, माम एकम शरणम व्रज, केवल कृष्ण का शरण लेना चाहिए अकिंचन होकर। तो अकिंचन का मतलब है जो व्यक्ति भौतिक संसार में कोई कामना नहीं करता है, ना किसी भौतिक प्राप्ति के, यहां तक कि मोक्ष के भी वो नहीं चाहता, कुछ किसी चीज के प्रति आसक्ति उसकी नहीं है। फिर महाप्रभु यह सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक सनातन गोस्वामी को कहते हैं। उसके बाद कहते हैं
भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य है न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य।
भक्तवत्सल, कृष्ण भक्तवत्सल है, कृतज्ञ, अपने भक्तों के प्रति बहुत कृतज्ञ है कि इसने मेरी इतनी सेवा की, तो मुझे भी आभारी होना चाहिए कि मेरी सेवा कर रहा है। समर्थ, सारी शक्तियां उनमें हैं। वदान्य, बहुत उदार चित्त के है ना कृष्ण छाड़ी पंडित नाहीं भजे अन्य। इसलिए एक जो विद्वान पंडित है वो श्री कृष्ण को छोड़ के और दूसरे किसी के शरण में नहीं जाता है। कृष्ण की पहचान जब उसे हो जाती है, कृष्ण के गुण क्या है वो जान जाता है, तो फिर ऐसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के जाने से क्या मतलब है? ये कोई अकलमंदी का काम नहीं है। फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं। कह पंडितस्त्वदपरं शरणं, कह पंडितस्त्वदपरं शरणं समीयाद् भक्त प्रियादृतगृह सुहृदः कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भिकामान् आत्मानम् अप्य उपचयाय प्यौनयस्य। हे प्रभु, अपने भक्तों के प्रति आप बहुत प्रेम रखी भावना रखते हैं। आप सत्यवान हैं और एक आभारी मित्र हैं। कौन ऐसा पंडित है? कह पंडित त्वत अपरम शरणम समीयाद, जो आपके शरण को छोड़ के किसी दूसरे के शरण में जाएगा। आपके सारे भक्तों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर देती हैं, यहां तक कि कभी कभी आप स्वयं अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। फिर भी इसमें न तो कभी आपका घटन होता है न आपकी वृद्धि होती है। जब आप भक्त को बहुत कुछ दे देते हो, स्वयं अपने आप को भी उनके हवाले कर देते हो, तो उस समय आपकी वृद्धि और आपका घटन नहीं होता है। परंतु ऐसे गुण वाले भगवान श्री कृष्ण के शरण को छोड़ के कौन ऐसे पंडित है जो किसी दूसरे के शरण को ग्रहण करेगा? क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति है हमारे शरण को ग्रहण करने के लिए। विज्ञ जनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान, अन्य त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। विज्ञ जन मतलब वो जन, वो व्यक्ति जो विज्ञ है, बुद्धिमान है। हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान, तो ऐसे अकलमंद पंडित को यदि कृष्ण के गुणों के बारे में ज्ञान हो, अन्य त्याजी भजे ताते उद्धव प्रमाण, तो वो स्वाभाविक ही अन्य सारे शरणों को त्याग के, अन्य सारे कार्यों को त्याग के एकमात्र कृष्ण के शरण में ही जाएगा। और इसके लिए उद्धव प्रमाण है। तो कैसे प्रमाण है? उद्धव श्रीमद् भागवत में बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, तीसरे स्कंद में, जिसमें श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे गुण हैं कि ऐसे श्री कृष्ण के शरण में को नहीं जाएंगे तो और किसका शरण लेंगे? कौन सा श्लोक है? तो आप सबको कंठस्थ है, सब पाठ करेंगे अभी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सया पाययदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्याम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इस श्लोक का अर्थ कौन बताएंगे शब्द भेद करके? आप में से कोई? श्रीजी पंडित, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसे गुणों से युक्त, ऐसे कृपालु और शरण लेने के लिए योग्य कौन होंगे? शरण्य, शरण्य मतलब जो शरण लेने के योग्य है, इसलिए शरण्यम और शरणागत, जो शरण लेते हैं और जिनका शरण लिया जाता है। तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन योग्य है जिनका शरण हम ले सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के गुण ही है ऐसे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शरणागत शरणागते रकिंचनैर एकई लक्षण तार मध्य प्रवेशय आत्मसमर्पण। शरणागत और अकिंचन, ठीक है, हिंदी का ही अनुवाद पढ़ लेते हैं इसमें, प्रभुपाद जी का अनुवाद। भक्त दो प्रकार के होते हैं, कौन से दो प्रकार? शरणागत और अकिंचन, आप्तकाम तथा शरणागत। अकिंचन मतलब आप्तकाम। आप्तकाम का क्या मतलब है? जिसकी और कोई भौतिक कामना नहीं है। उनके गुण एक से होते हैं, किंतु जो कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं, उनमें एक दिव्य गुण और पाया जाता है, वह है आत्मसमर्पण का गुण। तो आत्मसमर्पण तब जब ये एक आभूषण भक्त में आ जाता है, तो फिर भगवान की दृष्टि से वो और भी सुंदर बन जाता है। यदि कोई भक्त है, ठीक है, भौतिक कामनाएं भी नहीं है, वो भी भक्त माना जाता है, परंतु ऐसे अकिंचनों में से जब कोई आत्मसमर्पित हो जाता है श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से, तो उसको शरणागत कहते हैं। तो ऐसे भक्त श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर से हम कहते हैं, भक्त दो प्रकार के होते हैं, आप्तकाम तथा शरणागत। उनके गुण एक से होते हैं, किंतु जो कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं, उनमें एक दिव्य गुण और पाया जाता है, वह है आत्मसमर्पण का गुण। दूसरे शब्दों में, ये गुण अकिंचनों में नहीं पाया जाता। तो आत्मसमर्पण के बिना भक्ति करना ज्यादा प्रशंसनीय बात नहीं है। ठीक है, भक्ति कर रहे हैं उतना ठीक है, एक दृष्टि से प्रशंसनीय है, परंतु शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए, सचमुच वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह आत्मसमर्पण का लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ऐसे शरणागति के लक्षण देते हैं। ये श्लोक भी आपने, आप में से कितने भक्तों को कंठस्थ है ये श्लोक? ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय का 100वां श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम् तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। मतलब और कोई रह गया? तो अंतिम बार मैं करता हूं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम् तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। आपको याद होगा जब हम एक बार ब्रह्मचारी यात्रा में गए थे, तो श्लोक उच्चारण के ऊपर चर्चा की थी, याद है? और इसमें एक बात ये बताई थी कि संस्कृत भाषा का उच्चारण करते समय मुंह खुलना चाहिए है ना, नहीं तो वह सही शब्दों का उच्चारण नहीं होता है। तो ऐसे संस्कृत के अध्यापक भी बताते हैं जब होना है, नहीं तो जो मात्राएं हैं और अलग अलग अक्षर हैं उनका उच्चारण सही नहीं हो पाता है। तो हमें मौका लेना चाहिए हमारे उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए। हम हर रोज गाते हैं, गुरुवष्टक गाते हैं, हम शिक्षाष्टक प्रार्थना भी गाते हैं, तो विसर्ग आदि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर अभी हम जगन्नाथ अष्टकम भी गाते हैं, तो अच्छा एक मौका है हम सब के लिए। इन श्लोक पाठ के द्वारा हमारे उच्चारण को और भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद है इस प्रकार से, शरणागति के छह विभाग ये हैं, भक्ति के अनुकूल बातों की को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार, कृष्ण द्वारा संरक्षण का विश्वास, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण तथा दीनता। तो छह लक्षण ये शरणागति के है। सबसे पहला कौन सा है? आनुकूल्यस्य वर्जनम। आनुकूल तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल यस्य संकल्पः, एक संकल्प कर लेना चाहिए दृढ़ता से, जो भी चीजें हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हैं उनको दृढ़ता से स्वीकार करना। तो ये है अनुकूल यस्य संकल्पः। जैसे कि कौन सी चीजें लाभदायक हैं हमारे भक्ति के लिए, कौन सी चीजें? सुबह आना मंगल आरती, सुबह के कार्यक्रम के लिए, मंगल आरती के कार्यक्रम के लिए, और हाँ ध्यानपूर्वक जप करना, शास्त्रों का अध्ययन, भागवत पाठ, और अनुकूल क्या क्या है? हाँ भक्तों का संग और अर्चा विग्रह की सेवा और ब्रह्मचारी आश्रम। अनुकूल है ना? बहुत अनुकूल है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर भक्ति नहीं किया जा सकता, मतलब ये है कि यहां जो अनुकूलता है भक्ति करने के लिए बाहर नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता श्रीकांत सिंह? क्यों नहीं हो सकता? तब बाहर भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते और समस्याएं बढ़ जाती हैं, संसार का संपर्क बहुत ज्यादा होता है, है ना, बहुत और ऐसे कारण है। और क्या अनुकूल है हमारे भक्ति के लिए? हाँ एक भक्तिमय वातावरण, ठीक है, मंदिर का रहने का वातावरण या मंदिर में बार बार आना, भक्तों के संग का वातावरण, और हाँ केवल प्रसाद स्वीकार करना, और भगवान के धाम में वास या जाना। तो प्रभुपाद के शिक्षाओं के अनुसार ये मंदिर भी भगवान का धाम है, धाम के बराबर है। तो ऐसे अनेक अनुकूल बातें होती है प्रतिकूल, प्रातिकूल यस्य वर्जनम, तो जो प्रतिकूल चीजें हैं भक्ति के लिए वो वर्जित हैं, उनको त्याग देना ये भी शरणागति का एक लक्षण है। तो हम यदि इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम शरणागत नहीं है। पहले ही दो लक्षण शरणागति के ये हैं कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उसे दृढ़ता से त्याग देना। तो भक्ति के लिए कौन से प्रतिकूल चीजें हैं? उदाहरण, हाँ, चार नियम प्रतिकूल है, चार नियम भंग करना ये प्रतिकूल है। एक बार एक दीक्षा का समारोह हो रहा था तो एक भक्त को पूछा कि वो बोला उसने मैं 16 माला जप करूंगा। उनको पूछा गया फिर चार नियम क्या है, तो बोले मांसाहार करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना। फिर उसकी याद आने नहीं, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है? तो नियम है कि इन चीजों को नहीं करना है, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है कि ये चार निषिद्ध कार्यों को त्यागना चाहिए। प्रतिकूल क्या है? ये चार निषिद्ध कार्य, जुआ इत्यादि, मांसाहार, व्यभिचार, मादक द्रव्यों का सेवन, ये निषिद्ध कार्यों को त्यागना चाहिए। और अभक्तों का संग ये प्रतिकूल है, और बस इतना ही प्रतिकूल। और क्या है भक्ति के लिए? अत्याहार प्रयासश्च, तो आपको पता ही है ये श्लोक है। और क्या? ग्राम कथा प्रजल्प में आ गया, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्प और नियमाग्रह है ना। तो ग्राम्य कथा ये एक प्रतिकूल वस्तु है। तो ऐसे अनेक प्रतिकूल चीजें हैं, चाहे हमारे व्यवहार में हो, चाहे हमारे मनोवृत्ति में हो। मनोवृत्ति अर्थात हमारी भावना, एटीट्यूड, इसमें भी अनुकूल और प्रतिकूल का विचार होता है। जैसे कोई किसी का विचार है, इसके बारे में भी हम चर्चा एक बार ब्रह्मचर्य क्लास में कर चुके थे विस्तार में। कोई व्यक्ति सोचे मैं ही सबसे अच्छा भक्त हूं, तो अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल। और कोई सोचे मैं सारे वैष्णवों का दास हूं, अनुकूल है प्रतिकूल है? अनुकूल। तो केवल बाह्य कार्यों की बात नहीं की जा रही यहां पे, बल्कि एक मानसिकता की बात, भावना की बात, यह भी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मानसिकता की बात इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत में भी, इसके आगे भी चैतन्य महाप्रभु इनको बताने वाले हैं, दोहराने वाले हैं। फिर तीसरा है रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षबे कृष्ण ए विश्वास पालना। भक्ति विनोद ठाकुर दूसरी जगह भी कहते हैं कि अवश्य श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ही हैं जो मेरी रक्षा करेंगे, और वो करेंगे अवश्य, दूसरा कोई नहीं कर सकता, श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और वो करेंगे। कहीं ऐसे हमारे मन में संशय न हो कि हाँ श्री कृष्ण रक्षा कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं मेरा। नहीं, ऐसा नहीं। समर्थ है वो, हम मानते हैं, लेकिन हमारी रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे, अवश्य करेंगे। एक भक्त एक बार पूछ रहे थे, हम गोकुल धाम में आके रहना चाहते हैं, लेकिन वहां हमने सुना भालू है, शेर है और सब ऐसे पशु हैं, तो हमारा संरक्षण क्या है हम वहां जाके रहेंगे? तो फिर हमने पत्र में उत्तर दिया, कृष्ण आपके संरक्षण है। मैंने कहा इतने सालों से भक्त वहां बड़े आनंद से रह रहे हैं, किसी को भालू से कुश्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना शेर से कुछ प्रहार करने की आवश्यकता पड़ी। इतने भक्त लोग इतने सालों से बड़े आनंद से बिना कठिनाई से रह रहे हैं, तो क्यों आपको इतना डरना चाहिए? ब्रह्मचारी को निर्भय होना चाहिए, ब्रह्मचारी को साहसी होना चाहिए, ब्रह्मचारी को डरपोक नहीं होना चाहिए, कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय को डर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो शरणागत है उसे भी निर्भय होना चाहिए, हर चीज में डरना नहीं चाहिए। फिर हमने बोला हाँ, सांप अवश्य घास में हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सांप के बारे में पूछा, हो सकता है, लेकिन पिछले 40 साल में बिरला एक या दो ऐसे घटना हुए होंगे सारे इलाके में। और फिर हमने उत्तर दिया, जहां तक खतरे की बात है, मैं समझता हूं कि जो आपको गोकुलधाम में सुरक्षा मिलेगी वो शहरों में नहीं मिलेगी। कम से कम गोकुलधाम में गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है, शहरों में पता नहीं गाड़ी में चले पीछे से कोई आके ठोकर मार देता है, आपका गलती भी नहीं है। कितनी बार ऐसे होता है, कितने भक्तों के साथ ऐसे होता है, आप आराम से हल्की गति से भी गाड़ी चला रहे हैं। अभी हमारे सुदर्शन प्रभु हैं, उनको गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अपघात, उनकी ज्यादा गलती नहीं थी, धीमे गति से चल रहे थे, वो सामने से अचानक गाड़ी ने रोक दिया, तो उससे बचने के लिए वो टकरा गया, दोनों पति पत्नी गिर गए और हड्डी उनकी टूट गई, काफी कुछ चोट पहुंच गया। तो शहर ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरों से युक्त है, वहां तो कम से कम गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं है। अभी अभी एक दो तीन महीने पहले कलकत्ता में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे प्रसिद्ध महंगा हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सब चीजें, बड़ा नाम सब कुछ, उसमें आग लग गई नीचे कहीं, कोई इलेक्ट्रिकल चीज में कोई आग लग गई, 80 लोग मारे गए हॉस्पिटल के अंदर, 80 लोग मर गए, सोए सोए मर गए, उधर उठ के भी नहीं जा सकते, सब मरीज थे, 80 लोग मर गए। तो बैठे बैठे रस सड़क पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इतना क्यों डरना चाहिए, हमने कहा, बल्कि ज्यादा सुरक्षित वहीं पे है, कम से कम ये सब खतरे नहीं है, तो अवश्य कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। जब हम ब्रह्मचारी बने थे, हमें याद है, अनेक लोगों ने ये कहा था कि अरे कल कुछ हुआ तो क्या होगा, आपसे भी ऐसे कहा होगा ना लोगों ने, आपसे कहा लोगों ने, अरे कल अभी तो ठीक है, कल कुछ हुआ तो क्या होगा। फिर हमने उत्तर दिया, होगा तो होगा, जो होना है सो होगा। जीवन में जब हम शरणागत हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो फिर और क्या चिंता करना है हमको, क्यों डरना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए तो ये हमारा विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये रिस्क लेना है जीवन में, किस चीज में रिस्क नहीं लेते हैं, सड़क पार करने में भी रिस्क लेते हैं कि सामने वाला आदमी जो है वो ब्रेक दबाएगा, हम देख रहे हो आ रहे हैं, वो एक्सेलरेटर नहीं दबाएगा गलती से, है ना। हर चीज में हम विश्वास करते हैं, रिस्क लेके जाते हैं, आगे कदम रखना ये रिस्क है, कहीं फिसल ना जाए, गिर ना जाए, सीढ़ी से जाना। कितने बड़े बड़े लोग राजाएं हैं, अकबर राजा के पिता हुमायून, वो सीढ़ी से फिसल के गिर गए, इतने बड़े बड़े युद्धों में, धुआंधार युद्ध, तीर तलवार आदि से बच गए, लेकिन सड़क से नीचे, वो सीढ़ी पे नीचे गिर के मर गए। तो जब नुकसान होना है, मरना है, जो भाग्य में है वैसे होना है। तो विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर हम भक्त को बोल रहे थे, इसलिए भक्त को निडर होना चाहिए, वहां जाके रहने के लिए कोई ऐसे संकोच नहीं करना, ऐसे डरना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को। जब ब्रह्मचारी साहसी हो जाता है तो फिर निडर हो जाता है। साहसी कैसे होता है? श्रद्धा जब उसके मन में होती। यदि हम श्री कृष्ण के रक्षा के प्रति हम श्रद्धा रखेंगे तो फिर हम निडर रहेंगे, फिर भविष्य की क्या चिंता करनी है हमको, क्यों क्या सोचना है भविष्य के बारे में। कृष्ण के लिए कम से कम हमने किया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वात आप्तुम् अभजताम् स्वधर्मतः। ये श्लोक सुना है ना आपने? किनका श्लोक है? कौन समझाएंगे इसको? देवानंद प्रभु समझाएंगे इसका मतलब? नारद मुनि क्या बोलते हैं? कुछ कौन से कारणवश? भजन अपक्व, भजन में कच्चा होने के कारण। पते ततो यदि, यदि आवश्यक नहीं है कि पतन होगा, लेकिन यदि हो भी गया तो फिर क्या बिगड़ा, क्या नुकसान हुआ? तो क्या पाया? बिल्कुल, जो भले इस भौतिक जगत में जाके बहुत कुछ इसने हासिल कर लिया लेकिन वो श्री कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसने क्या पाया। इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए विशेष करके ये बहुत आवश्यक है कि हम श्री कृष्ण की रक्षा के प्रति पूरा विश्वास रखें। जगह जगह हम जब जाते हैं हमारे संस्था में लोग अपने बुढ़ापे की चर्चा का चिंता करते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब उस समय हम क्या करेंगे, तब हमारी कोई देखभाल नहीं करेगा, अभी तो शरीर साथ दे रहा है हम कर रहे हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे फिर आगे चल के क्या होगा। ऐसे अनेक जगह भक्तों को ऐसे संशय रहते हैं, लेकिन फिर किस विश्वास से, किस श्रद्धा से हम ब्रह्मचारी बने थे, क्यों ऐसे संशय होना चाहिए? पहले तो संस्था में अवश्य भक्त हमारी सेवा करेंगे, हमका देखभाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन समझ लीजिए नहीं भी किया तो कृष्ण रक्षा करेंगे ना, तो ये विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए। तो विश्वास रखेंगे तो हम निडर हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे, फिर बिंदास हो जाएंगे। इसलिए विश्वास भक्ति का सार है, श्रद्धा। इसलिए भक्ति में प्रगति श्रद्धा के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसकी श्रद्धा कितनी है? कोमल श्रद्धा, मध्यम वर्गीय श्रद्धा और तीव्र श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। तो ये श्रद्धा और रक्षा, इसके बीच में संबंध है। श्री कृष्ण की रक्षा के प्रति हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारा पूरा ध्यान आजीवन देखेंगे। हम जब उनके शरण में आए हैं और हम शरणागत अवस्था में रहेंगे और हम करेंगे, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। फिर गोपतृत्व, गोपतृत्व मतलब हमारे, हाँ प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब रक्षा करने की बात करते हैं तो वो चेतना की रक्षा की बात करते हैं या शरीर की रक्षा की बात करते हैं? प्रमुखतः वो चेतना की रक्षा की बात करते हैं, परंतु उस चेतना की रक्षा के लिए जो आवश्यक है उन चीजों की रक्षा भी वो करेंगे, नहीं तो चेतना की रक्षा कैसी होगी। यदि हमारी श्रद्धा भी उतनी नहीं है, है लेकिन फिर भी कम है, तो भगवान वैसी भी रक्षा करेंगे हमारी, जो हमारी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है उन चीजों की रक्षा भी भगवान करेंगे। बड़ी से बड़ी परीक्षाएं बड़ी से बड़े भक्तों को आती है, छोटे भक्तों को छोटी परीक्षाएं आती है। पांडवों को, प्रहलाद महाराज को जो परीक्षाएं आईं, कितनी बड़ी परीक्षाएं थी। कभी कभी भगवान शरीर की रक्षा करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, परंतु साधारणतः वैसे भी अंत में शरीर का नाश तो होना ही है, परंतु साधारणतः भगवान श्री कृष्ण साधारण दृष्टि से भी भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। परंतु हमें भावना को बनाए रखना चाहिए, विश्वास हमारी सुरक्षा है, ये हमारा कवच है। विश्वास हमारे अंदर रहेगा तो फिर किसी भी बात का डर हमें नहीं है। जो भविष्य में होना है होने दो, इतना ऐसा विश्वास भक्त को होना चाहिए। खास करके जब हम ब्रह्मचारी बनते हैं तो भविष्य का कोई चिंता नहीं है, बनने के पहले सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिना सोचे समझे कृष्ण भावनामृत क्या है, ऐसी भावुकता से हम आए, हमको पता नहीं अभी आके फिर सुना कि कृष्ण भगवान है, नहीं, सोच समझ के। लेकिन जो भी ब्रह्मचारी बनते हैं ऐसे सोच समझ के ही तो बनते हैं ना। एक बार हम शरण में आ गए, भगवान से कह दिया तव अस्मि, हम आपके हो गए, फिर अब क्यों डरना है, अब नहीं डरना है। जो भी हमारी चेतना की रक्षा के लिए आवश्यक है भगवान करेंगे। यही तो शरणागति के बारे में बार बार भगवान बताते हैं ना। रामचंद्र भी प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है रामायण का, विभीषण वाला, किसको याद है, बोलो जोर से बोलो। बोलो पूरा। थोड़ा जोर से। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। सकृत एव प्रपन्नो यः तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्येतत् व्रतं मम। श्री राम ये वचन लेते हैं, वो क्या कहते हैं, सकृत एव, एक बार भी किसी ने, प्रपन्नो, प्रपन्नः यः, जो व्यक्ति शरणागत होता है मेरे प्रति, तव अस्मि इति याचते, ऐसी याचना करके कि मैं आपका हूं, तव अस्मि, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं उसको सदैव अभय निर्भयता प्रदान करता हूं। व्रतम मम एतद, ये मेरा व्रत है, मेरा वचन है। तो ऐसे भगवान भी कई बार ऐसे कहते हैं। प्रश्न यह है कि ऐसे सुना था कि एक भक्त थे, अनेक वर्षों से भक्ति कर रहे थे, और एक जगह गए, देखा कि वहाँ कोई भूकंप या कुछ हुआ था जिसमें मंदिर के अंदर रहने वाले भक्त थोड़े उनका देहांत हो गया तो वो इतने विचलित हो गए कि भक्ति छोड़ दिया कि भगवान ने इनकी रक्षा क्यों नहीं की। यदि भगवान ठीक समझे तो वैसे ही करेंगे, वही सबके लिए जो अच्छा है वैसा ही भगवान करेंगे। यदि ऐसी घटना हुई कि नहीं मुझे पता नहीं, हमने ऐसे सुना नहीं, लेकिन हुआ भी होगा कहीं, तो फिर भी भगवान जो ठीक है वही करेंगे। इसके पीछे भगवान की क्या इच्छा है, क्या योजना थी, हम नहीं कह सकते, परंतु अवश्य ये है कि एक इमारत की बात तो क्या, सारे सृष्टि का संहार भी हो तो फिर भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। सारे पृथ्वी लोग भी चूर चूर हो जाए फिर भी हमें समझना चाहिए रक्षिष्यति इति विश्वास। ठीक है, अच्छा वैसे समय हो गया काफी, तो वैसे हाँ विश्वास को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक कार्य कौन से करने चाहिए हमारे दैनिक दिनचर्या में? प्रथम बात है, जहां श्रद्धा है वहां रहना, श्रद्धालु भक्तों का संग, क्योंकि श्रद्धा से ही तो श्रद्धा आती है। श्रद्धा हमें कहां मिलेगी? जहां उपलब्ध है, तो श्रद्धालु भक्तों का संग। दूसरी बात, आचार्यों का संग, ग्रंथों के द्वारा ग्रंथों का अध्ययन, कृष्ण का संग, नाम के द्वारा, विग्रह के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, साथ साथ में श्रवण कीर्तन के ऊपर जोर देने के बजाय के साथ साथ पूर्ण अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न रखना, मन को खाली नहीं रखना, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, श्रवण कीर्तन के वातावरण में बने रहेंगे और सकारात्मक भाव रखेंगे तो अवश्य फिर विश्वास की वृद्धि होती रहेगी, विश्वास बढ़ता जाएगा। इसलिए साधन भक्ति का अंग है ये। साधन भक्ति के जितने भी हमारे अंग हैं उनको करते रहने से ये श्रद्धा और भी मजबूत होती जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें कार्यक्रम दिया है उन्हीं चीजों को हमें और अच्छी तरह से करना है। कोई नई चीज नहीं है करने के लिए, हम किसी नई चीज का आविष्कार नहीं कर सकते कि श्रद्धा कम हो गई तो कुछ नई चीज हमको करनी है, नहीं, वही चीज करनी है, परंतु और तीव्रता से और उत्साह से और लगन से, फिर अवश्य श्रद्धा बढ़ेगी। कोई ऐसी नई बात नहीं है जिससे कि ये सब हो सके, वही बातें, लेकिन उनको अच्छे ढंग से करना है और हृदय से करना है, उत्साह से करना है। और प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें वो श्रद्धा, अटूट श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, फिर अवश्य भगवान जल्दी ही एक दिन के अंदर भगवान देते हैं, कभी दो दिन भी लग सकते हैं लेकिन देंगे, कभी तुरंत दे सकते हैं एक क्षण में। वैसे अगले क्लास में इसके और आगे बढ़ाएंगे बात को, काफी समय हो गया। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे।